أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دور قرآن 2017 کے ڈے 31 کا آغاز کریں گے اور آج کا ہمارا گول اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 29واں پارہ ہے جو سورۃ ملک سے شروع ہو کر سورۃ مرسلات پہ پورا ہوتا ہے. پورے پارے کا بنیادی تھیم دعوت اللہ اس کے تقاضے اور طریقہ کار ہے. اگر صرف صورتوں کی ترتیب کے ساتھ دیکھیں تو پہلی صورت ملک ہے جو توحید کی خوبصورتیاں بیان کرتی ہے. تبارک الذی سے ہی شروع ہوتی ہے اور پوری صورت انسان کو اس بات پہ مائل کرتی ہے کہ اللہ کی باتیں کرو. اگلی صورت قلم ہے جس کو صورت نون بھی کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کرتی ہے. اور تیسری صورت الحاقہ قیامت. ان تین میں ایمان کی بنیادی تین چیزیں ایمان ثلاثہ جس کو کہتے ہیں توحید رسالہ اور ایمان بالآخرہ ہے. جب بھی کوئی کہیں دعوت دینے نکلے، کسی کو بھی اللہ سے جوڑنا ہے تو ترتیب یہی ہونی چاہیے، پہلے ان کو اللہ کی پہچان کرائی جائے۔ الحمدللہ کچھ سمجھ آنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ظاہر کیا جائے، جب دل اس پہ کھلنے لگے تو پھر قیامت کے بارے میں بات کی جائے۔ جب یہ تین مرحلے ہو جائیں تو اس کے بعد سورت معارج اگلی سورت ہے جو جنت اور جہنم کا خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ یعنی دعوت اللہ میں ترتیب اگر بدل دی جائے تو فائدے سے زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت نو ہے، دعوت اللہ کے راستے کی رکاوٹیں، مشکلات، کون لوگ ہیں جو اس راستے میں آنے والی ہر مشکل کو گلے سے لگاتے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام یہاں ایک عملی مثال ہے۔ یعنی دعوت کا کام کرنا ہے اور دعوت کے راستے کی مشکلات کو سہنا ہے تو حضرت نوح کو رول ماڈل بنا لو، اور ہمارے آج کے پارے کی قابل تقلید پرسنالٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت نوح علیہ السلام ہیں کہ ہر قسم کے مشکل سے مشکل اور آسان سے آسان حالات میں بھی انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا کام نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد سورج جن آتی ہے۔ سورج جن کیا ہے؟ صرف ایک درس نے دل کی دنیا بدل دی، ایک پیغام سن کے نکلے اور توحید سمجھ گئے جو پورے دین کا خلاصہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دائی بن کر اپنی قوم کو جا کر کہنے لگے، یا قومنا، اے ہماری قوم، دیکھو ہم نے ایک بات سنی ہے کہ کوئی اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ آج بھی یہی حکم ہم سب کو بھی ہے کہ بلغنی ولو آیا، میرے سے کوئی بات اگر سن لو تو اس کو پہنچا دو دوسروں کو، تاکہ جو اللہ نے تمہیں نعمت دی وہ دوسروں کو مل جائے۔ خود نہ بول سکو تو دوسروں کی مدد کر دو کسی بھی طرح سے کہ وہ اس کتاب سے جڑ جائیں۔ اور پوری سورت جن جو وہ ایک خطبے کی صورت میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے مزمل، دائی اللہ، یعنی اللہ کی طرف بلانے والے یا اللہ سے جوڑنے والے یا اللہ کے دین کے کام کرنے والے کی راتیں کیسی ہونی چاہیے۔ اور اگلی صورت ہے مدثر، اللہ کی طرف بلانے والوں کے دن کیسے ہونے چاہیے۔ یعنی صورت مزمل قیام اللیل ہے، تو صورت مدثر قم فانذر، قیام بن نہار ہے، یعنی راتیں اللہ کے آگے رو رو کے گزریں اور دن اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے پہ گزرے۔ اس کے بعد اگلی صورت قیامت ہے، جس میں انسان کی موت کا منظر پیش کیا گیا کہ جب ایک انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت کس بے بسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس صورت سے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کو خبر ملے نہ ملے، تمہیں خود کو ضرور پتہ ہوتا ہے کہ تم کیسے چل کے گئے ہو۔ اور آخر میں پھر صورت انسان یعنی دہر، اور صورت مرسلات۔ صورت الانسان میں جنت کی ڈسکرپشن ہے ساری، صرف جنت جنت جنت، زیادہ غالب رنگ جنت کا ہے، اور صورت مرسلات میں جہنم کا ہے۔ یعنی دعویٰ پیکج کمپلیٹ کب ہوتا ہے؟ جب لوگوں کو اللہ سے جوڑنے سے بات شروع کریں اور بالآخر جنت یا جہنم پہ ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حکمت دے، ہم بہترین طریقے سے لوگوں کو اللہ سے جوڑ سکیں۔ صورت ملک پہ چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی ایک صورت جس کی 30 آیات ہیں، یہ نجات دینے والی ہے، قیامت کے دن سفارش کرے گی اپنے پڑھنے والے کے حق میں، قبر کے عذاب سے بچنے کی باتیں بھی سورت کے ساتھ آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورت ملک اور سورت سجدہ جو ہم 21 پارے میں پڑھ چکے، اس کو پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ توحید توحید اور توحید۔ جب ایک انسان رات کو اللہ کی اتنی تعریفیں کرتا ہوا سوئے گا، زندگی کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے سوئے گا، تو پھر غفلت والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ زندگی کا مقصد سمجھا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی نام کے ساتھ تبارک کا لفظ آیا، حقیقت کیا ہے؟ کہ اللہ کے نام میں بھی برکت ہے، اللہ کی ذات میں بھی برکت ہے، اللہ کی کتاب میں بھی برکت ہے۔ جس انسان کی زندگی میں لفظ اللہ آ گیا، اس کی زندگی برکتوں سے بھر گئی۔ ساری دنیا کی بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے، اگر اس سے آپ کا اور میرا تعلق جڑ جائے تو مجھے آپ کو کیا ملے گا؟ सोचने की बात है। अब इतनी बड़ी हस्ती जिसके हाथ में सब कुछ है, उसने मुझे और आपको क्यों पैदा किया? व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, मकसद हयात क्या है? तो अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात, जिसने मौत और जिंदगी को ईजाद किया ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। वो जबरदस्त भी है और दरगुजर फरमाने वाला भी है। ये है वो आयत जिस पे आज का हमारा टाइम वेस्टर भी कह लीजिए और सोच का नुक्ता है, मकसद हयात। और वो क्या है? आजमाइश। हम सारी जिंदगी आजमाइशों से भागते हैं। आजमाइश को अगर मैं लफ्ज इम्तिहान कह दूं तो बहुत अच्छी तरह समझेंगे। इस आयत ने आपको मुझे बता दिया कि मेरे आपके इस दुनिया में भेजे जाने का मकसद इम्तिहान है। और हैरत की बात है कि जिसे आने का मकसद ही ना पता हो वो उसे हासिल कैसे करेगा। सीधी सी बात है, किचन में गए हैं पता नहीं करना क्या है, गाड़ी में बैठे हैं पता नहीं जाना किधर है, तो आप क्या सोचते हैं कि वो कहाँ पहुँचेगा? तो इंसानियत में से अक्सरियत आज मकसद हयात से गाफिल है। एक छोटा सा क्लिप है, यासीन क्या नाम है उनका, कुछ इस तरह के स्पीकर है, पर्पज़ ऑफ लाइफ, यानी एक डीवीडी की सूरत में भी बहुत खूबसूरत डीवीडी है, बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा होता है, जिसमें पूरी क्रिएशन और क्रिएटर को जोड़कर बताया गया कि ज़िंदगी में दुनिया में इंसान को क्यों भेजा। हम कम अज़ कम अपने आप को तो इस आयत की रोशनी में छान के देखें कि क्या हम ये सोचते हैं, क्या हम एक कमरे इम्तिहान में बैठे हुए हैं? देखिए ना, इम्तिहान के साथ ही तो कमरा इम्तिहान है। अब एक तालिब इल्म घर से निकलता है इम्तिहान देने की गरज से, क्या उसके निकलने, उसके तैयार होने, उसके वहाँ बैठने में संजीदगी होगी, फिक्र होगा, तफक्कुरात होंगे, वक्त की कमी का एहसास होगा? जो दिमाग में है सब उंडेल दूँ ताकि इस वक्त के ख़त्म होने से पहले पेपर पूरा कर दूँ, ये सोच होगी? और जो ही वो देगा पूरा अच्छा कर लिया तो उसके बाद क्या रिजल्ट का इंतज़ार नहीं होगा? और आखिर में ग्रेजुएशन डे पे उसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा? यही 10 स्टेप हैं हमारे इस दुनिया से आने और जाने के। जिस इंसान ने इस दुनिया की ज़िंदगी को इम्तिहान समझा वो संजीदा होगा, वक्त पे नज़र होगी, बार बार देखेगा कितना टाइम रह गया। 3 ही घंटे होते हैं अमूमन इम्तिहान में, और 3 ही घंटे हैं ज़िंदगी के, बचपन जवानी बुढ़ापा। वो इधर उधर नहीं ताके झांकेगा दूसरे क्या कर रहे हैं। अब एक बच्चा है इम्तिहान देने, क्या पढ़ पढ़ा कर माँ ने बेशुमार मेहनत कराई, कितना पैसा बाप ने लगाया सिखाने पे, पढ़ाने पे, ट्यूशनों पे, वापस आए, बेटा पेपर कैसा हुआ? मामा पेपर तो कर ही नहीं सका। क्यों? मेरा दोस्त नहीं आया उस वक्त, तो मैं तो पूरा वक्त दरवाजे की तरफ देख रहा, वो क्यों नहीं आ रहा? माँ चीखेगी कि नहीं, ये उन लोगों का हाल है जो दूसरों की बातें कर करके खुद अपना काम भी छोड़ देते हैं। तुम तो आगे थे, तुम तो करो। आप उस बच्चे के बारे में क्या कहेंगे जो पेपर देकर आए और माँ पूछे बताओ सुनाओ बेटा कैसा हुआ? कहना जो पेपर आया था मुझे पसंद ही नहीं आया, मैंने उसको फाड़ दिया। फिर क्या किया? माँ का दिल बैठेगा, फिर मैंने अपनी मर्जी के सवाल लिखे, पहले मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया जो मुझे आते थे, जो मुझे अच्छे लगते थे, फिर मैंने वो बहुत अच्छा किया। क्या कोई दुनिया की यूनिवर्सिटी उसको पास करेगी? ये है उन लोगों का हाल जो अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए दीन को बदल के इजाफों वाला, बिदात वाला, अपनी मनमानियों वाला, ख्वाहिशात वाला डाइल्यूटेड दीन लोगों को पेश करते हैं और फिर कहते हैं अब इसको तुम करो, अब तुम जन्नती हो हमारे ख्याल के मुताबिक। संजीदगी चाहिए। यह दुनिया एक फनप्लेक्स नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया जन्नतुल काफिर, जन्नत है, बाग, खाओ पियो, मौज मस्ती, लेकिन ये दुनिया मोमिन के लिए क्या है? दुनिया सिजनुल मोमिन, सिजन कैद को कहते हैं। अब एक कैदी है, उसको कैद में रखा, मनमानियां चलती है, जमीन पे नहीं सोऊंगा, बेड लगाओ, कौ तकिया दो, एसी लगाओ, खाना आया ये नहीं खाऊंगा वो चाहिए। कैदी तो पाबंद होता है, जो कैद में है ना, जिन्होंने खुद को बंदगी की कैद में रखा है, वो कहते हैं जो आता है वही खाना है, हमारी से ज्यादा की औकात नहीं है। अब इन सारी मिसालों के बाद आप जरा अगले दूसरे मरहले पे देखें कि कोई शाम को नहा धो के खुशबुओं में बस बसा के किसी पार्टी के मूड में कहीं जाए, शादी में जा रहा है, किसी फंक्शन में जा रहा है, गेट टुगेदर में जा रहा है, क्या उसकी तैयारी और सुबह इम्तिहान में जाने वाले की तैयारी में फर्क होगा? सबसे पहले तो मूड ही चेंज हो जाएगा, रिलैक्स्ड, आज मजा आएगा, इंजॉय करेंगे, फन। आज एंटरटेनमेंट में क्या है, आज स्नैक्स में क्या है, आज एपेटाइजर्स में क्या है, आज कहाँ से सजना है, क्या पहनना है, ज्वेलरी कौन सी, जूते कौन से, कपड़े कौन से, गैर संजीदगी। बस ये दो चीज़ों को नज़र में रख ले। जीने के ये दो ही रास्ते हैं, या पहला या दूसरा। पहले का इंजाम इंशाल्लाह जन्नत है, दूसरे का इंजाम जहन्नुम है। जो इस रास्ते पे चला वो वहां पहुंचेगा। मेरे आपके लिए जिंदगी का एक एक दिन कीमती है, एक एक दिन कीमती है। जो इस जिंदगी के एक एक मिनट का फायदा उठाएगा वो अपनी आखिरी दौर में बड़ा खुश होगा। अब देखिए, कुछ लोगों का बुढ़ापा बड़ा खूबसूरत होता है। जिंदगी में हर चीज वक्त पे होती गई होती गई, और आप सारे कामों से फारिग मुतमईन बोरी बिस्तर बांध के बैठे हुए कभी बुलावा आया चल पड़ेंगे। वो कहते हैं मालिक ने बुलाना है जाना है, वादा करके आए हैं। कुछ लोगों का आखिरी वक्त बड़ी ही तकलीफ में गुजरता है, बीमारियों में। ये कौन है जिन्होंने सारी जिंदगी रब को नाराज किया लेकिन दिल में अच्छाई थी, अल्लाह ने कहा इनको बीमारियों से पाक करो। अल्लाह नोस दी बेस्ट, जिसका क्या मामला है। मैं आपको एक जनरल रूल बताती हूँ, और कुछ लोगों को आखिरी जिंदगी में बस एक हॉल पड़ रहे होते हैं, अब बनेगा क्या हमारे साथ। ये वो है जिन्होंने कुछ भी ना जाया किया। याद रखिए, दुनिया के हर इम्तिहान के बाद अगला दर्जा मिलता है ना, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड क्लास, थर्ड से फोर्थ में आप जाते हैं। इसी तरह अगर आप और मैं जिंदगी के किसी इम्तिहान से अगर नहीं गुजरे तो अगले दर्जे नहीं मिलेंगे। फिर आप देखिए, अय्युकुम अहसनु अमला, ये क्राइटेरियन सामने रखे तो अमाल की भी वैल्यू है। और अहसन अमल जो होता है ना, इसकी दो शरायतें, लिल्लाह हो अल्लाह के लिए, और तरीका रसूल का। अहसन अमल इखलास और तरीक़ा मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला। अल्लाह ताला हमारे आमाल को ज़ाया ना होने दे और हमें अपने आप को बेहतरीन चीज़ों में काम करने वाला बना दे। इसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला ने कायनात पे कुछ गौर व फिक्र करवाया हम सब से। फरमाया, अल्लज़ी खलक़ सब असमावात तिबाका मा तरा फी खल्क़िर रहमानी मिन तफावत, जिसने तह बतह सात आसमान बनाए, तुम रहमान की तख्लीक में किसी किस्म की बेरबतगी ना पाओगे, किसी किस्म की बेरबती ना पाओगे। इसको हाईलाइट करें और इसकी रोशनी में ज़रा हम अपने अमलों को देखें, दुनिया के भी और दीन के भी। हमारे आमाल, हमारे मामलात, उनमें कितने रखने हैं, उनमें कितनी बेरबती है, उसमें कितने शगाफ है, उसमें कितने झोल हैं। असल बात यह है कि हम आसन के दर्जे पे पहुंचने से पहले हिम्मत तोड़ चुके होते हैं। देखिए, मैं अक्सर अपने साथियों को बताती हूँ, 99 और 100 में फ़र्क कितने का है, एक दर्जे का है ना। उधर दो लफ्ज़ है 99 और उधर 100। बहुत सारे लोगों की कोशिशों में बस एक ही दर्जे का फर्क होता है। पानी को उबाल लीजिए, वो जगह जिसमें बॉइलिंग वाटर होता है उससे 1 डिग्री और ऊपर कर दीजिए तो वो भाप बन जाता है। उबलता हुआ पानी हो सकता है किसी के पाँव पे गिरे जला के राख कर दे, जला दे, गला दे, लेकिन अगर वो एक दर्जा और गर्म कर दिया जाता तो भाप बनती, हो सकता है कितने बड़े बड़े इंजन चला देता। तो कोशिशों को 100 से कम पे ना रखिए। हम कोशिशें भी करते हैं, हम नेकियां भी करते हैं, हम अमल भी करते हैं, लेकिन कमी रह जाती है पीछे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इस कलाम का हक अदा करने वाला बना दे। हर चीज़ में मैं दे रही हूँ, मुझे 100% की कोशिश करनी चाहिए। आप ले रहे हैं, आपको 100% की कोशिश करनी चाहिए। आपके लेने में कमी, मैं 10 मिनट लेट आऊं, 10 मिनट पहले छोड़ दूं, आप आए तो हांफते कांपते, आ सकते थे घर बैठ गए, बैठ के सुन सकते थे लेट गए, अपने बारे में परेशान रहे मैं कैसे बैठूं, मैं क्या करूं, तो ये कमियां होती हैं। याद रखिए, आप जब आने की नीयत करते हैं तब से लेके यहाँ बैठने तक भी शैतान आपसे मायूस नहीं होता। वो कितनी कोशिशें करेगा कि कहीं कोई खलल डाल दे, तवज्जो बढ़ जाए, सोच बदल जाए। एक क्लिक आएगा फोन का और आप कहेंगे सिर्फ देख लेती हूँ, करूंगी नहीं, जवाब दूंगी नहीं, मैसेज पढ़ लेती हूँ, अच्छा वॉइस है, बाथरूम में जाने के बहाने जाके सुनाती हूँ। ये सारे खलल होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर पलट कर देखो कहीं तुम्हें कोई खलल नजर आता है। बार बार निगाह दौड़ाओ, एक बार नहीं आता ना, अपेरेंटली तुम नहीं इतने कीन ऑब्जर्वर, तो दोबारा देख लो, तुम्हारी निगाह थक कर ना मुराद पलट आएगी। यानी अल्लाह की इस कायनात में कहीं होल नहीं। और मैं अक्सर सोचती हूँ, देखिए आप इस हॉल में बैठे हैं, हो सकता है ये 10 साल पुराना हो सकता है 2 साल पहले बना हो। अगर ये 100 साल पुराना होता तो क्या इसके हाल हुलिए, इसके डिज़ाइन लुक से पता चलता कि ये पुराना है? बिल्कुल पता चलता। एक घर आज बना और एक घर आज से 10 साल पहले बना, फ़र्क है ना। पुरानी चीज़ पुरानी होती है, रेनोवेट भी कर लें तो कुछ ना कुछ उसमें झोल रहते हैं, कभी आज जाकर आसमान को गुजरते हुए देखेगा, किसी जगह से आपको ये पुराना लगता है। और आज सुबह मुझे शायद अल्लाह ने ये आयतें पढ़ानी थी, मैंने सोचा कि मैं बाहर लेटूंगी, मुझे अच्छा लगता है ओपन एयर में। मैंने आज अल्लाह ने दिखाया, मैं तो अब यही कहूंगी, उस वक्त तो मैं समझी भी नहीं, रात डार्क स्काई, फिर ग्रे, फिर उसके बाद ऊपर सफेद बादल घुसे तो ग्रे और व्हाइट का कॉम्बिनेशन, और उसके बाद फिर लाइट ब्लू, और बिल्कुल फ्रेश ब्लू पे व्हाइट होता हुआ मैंने आज अपनी आंखों से देखा है। ये सुबह फजर से बाद की बातें, और मैं आसमान को देख रही थी और मैं बता नहीं सकती मैंने क्या पाया। मैं कहती थी ये कौन है जो इतनी जल्दी जल्दी कलर चेंज कर रहा है, ये कोई स्क्रीन सेवर भी नहीं है कि क्लिक पे कर दो तो ये रंग हो जाए तो वो हो जाए, ये कोई फ्लायर भी नहीं है कि एक कलर कॉम्बिनेशन से चेंज करो और उस पूरे में आपको कहीं झोल नहीं दिखेगा। हर रंग अपनी जगह खूबसूरत। रात को जो आसमान काला था सितारे जड़ दिए, इसीलिए फरमाया हमने तुम्हारे करीब के आसमान को अजीम और शान चराहों से आरास्ता किया, और इन्हें शयातीन को मार भगाने का जरिया बना दिया, इन शैतानों के लिए भड़कती हुई आग हमने मुहैया कर दी। यानी सितारे लगाए सजाने के लिए कि रात को मेरा बंदा जब आसमान को देखे तो दिल पे हैबत न तारी हो जाए। काला रंग जब शिद्दत से बंदा देखता है तो एकदम बो जाता है दिल पे, सिल्वर सितारे चमका दिए। आपको ब्लैक पे सिल्वर मोती सितारे मुकेश दबकी लगाने का स्टाइल किसने सिखाया, आसमान पे दिखाया? पर हम तो लगा लें तो चुभते हैं, हम तो लगा लें तो और परेशान, झड़झड़ हमारा पारा गिरता है। आसमान के सितारों का एक मकसद भी है, यानी कायनात में जमाल भी है तो कमाल भी है। कोई खूबसूरती बगैर वजह के नहीं है और हर चीज की कोई वजह मौजूद है। तो जिस रब का आसमान इतना प्यारा, उसका कुरान कैसे झोल वाला हो सकता है? आज दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स वालों को बता दो इस कुरान में कोई झोल नहीं है, मत इसको बदलने की कोशिशें करो, अपना सर मत फोड़ो, ये जैसा था जो कह दिया, जो होना था वो हो गया, तुम अपने दिमाग पे कोई फिक्र ना रखो। ये कैसे हो सकता है कि कायनात तो इतनी खूबसूरत है उसकी और शरीयत उसकी बेढंगी हो? अगर उसने औरत मर्द की कोई बांट रखी है तो ठीक रखी है, उसने विरासत में जो हिस्से दिए वो ठीक दिए हैं, तुम ना इतना दुखी हो, क्योंकि उस रब के तो हर काम में हुसन है, उसकी तो हर खूबसूरती में हुसन है। आप देखिए पत्ता भी गिरता है नीचे तो वो भी हसीन लगता है, आप फोर सीजन्स देख लीजिए तो वो कैसे होते हैं, हर सीजन की एक अपनी खूबसूरती नहीं है। समर में खिला हुआ सबस रंग, पत्ते ही पत्ते हर तरफ ग्रीनरी फूल, और जब वो जाती है, जाती भी समर कितनी खूबसूरत है ऑटम की सूरत में। मैं कहती हूँ कि मौत से पहले एक इंसान अगर अपने उस बदलते हुए लम्हों, झुर्रियों और तकलीफों को देखे, और एक पत्ते के दुनिया से मरते हुए दरख्त से उतरते हुए देखिए, सबज रंग पीले में, ब्राउन में और कितने मल्टी कलर में ढल के जाता है, उसका एक अपना हुसन है। सूखी शाहों का एक अपना हुसन है, फिर बर्फ पड़ती है तो सफेदी का एक अपना हुसन है। आपको अपने रब की कौन सी चीज अच्छी नहीं लगी तो फिर उसकी बांट भी अच्छी, फिर उसकी तकदीर भी अच्छी है, फिर उसका आपके हक में हर फैसला अच्छा है। ये सूरत मुल्क अगर रात को आप इन प्यारे जज्बों के साथ पढ़ें, कभी हो नहीं सकता नाराज हो, कभी ये हो नहीं सकता ना शुक्रे हो, लेकिन अमूमन हमारे मुंह से बुरे जुमले निकलते हैं, मेरी किस्मत फूट गई, गाड़ी ने आज ही खराब होना था, ये तो ब्लेंडर ने तो चलना ही नहीं था, और मेरे तो नसीब खोटे, जब मैंने नियत की तो ये हो गया। आप देखिए 90% लोग दिन में नेगेटिव जुमले बोलते हुए दिखते हैं, ये मेरे ही बच्चे ऐसे होने थे, मुझे ही नकट्टू मिलने थे, और मेरे मियाँ की जॉब जानी थी, और मेरे मियाँ को मेरे से मोहब्बत नहीं थी। अल्लाह के बंदो आप इतने नाराज हो अल्लाह से, तो कैसे अल्लाह आपके दिल में मोहब्बत डाले, कैसे आपको अपना कलाम दे? अल्लाह ने जिसको अपना कलाम देना होता है ना, पहले अल्लाह अपनी मोहब्बत देता है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें कायनात पे गौर व फिक्र करने वाला बना दे। और आप देखिए कि ये सितारे क्या हैं, ये अल्लाह के बंधे हुए गुलाम हैं। आज हम इन गुलामों से जाके किस्मत का हाल मालूम करें, ये हफ्ता कैसे गुजरेगा सितारे गर्दिश में, और ये सितारों से किस्मत मालूम करना। हदीस में आता है कि सिर्फ सितारों से अल्लाह ने तीन ही काम लिए, खूबसूरती है कायनात की, और इसी तरह यहाँ जो रुजूमल शयातीन है, और एक पीछे पड़ चुके हैं कि अंधेरों में रास्ते दिखाते हैं। आज भी बहरी सफर करने वाले जहाज और चलाने वाले सितारों की डायरेक्शन से सफर करते हैं। इसके अलावा अगर आपने फरमाया किसी ने कुछ किया तो वो बिगड़ गया, और आप देखिए कि अगर हम अपने ऊपर लेकर सोचे तो हमारा भी हर खूबसूरत अमल आसमान पे लगे हुए एक सितारे की तरह है। ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इसे अमल वाला बना दे। और गौर करें, हमारी हर खूबसूरत आदत एक स्टार है। बच्चों को स्टार्स मिल जाते हैं टीचर से, यू डिड गुड, यू डन गुड, ये किया वो किया। तो अपने अंदर भी हमें खूबसूरती लानी, इससे पता चलता है अल्लाह ने कोई काम बेढंगा पैदा नहीं किया।